आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मित्र वृंद, आज परम पावन तिथि है, मोक्षदा एकादशी तिथि, और इस तिथि में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति के लिए ये गीता का उपदेश प्रदान किया था। और गीता का यह उपदेश मानव जाति के लिए उद्दिष्ट है, क्योंकि इसके माध्यम से सारा मानव समाज भगवान कृष्ण की ओर उन्मुख हो सकता है और भौतिक संसार से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। इसलिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी तिथि है, जो मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। यहां मुक्ति का अर्थ भौतिक संसार के दुखों से मुक्ति है। तो इस परम पावन तिथि जो मुक्ति दायिनी है और जो भगवान कृष्ण के उपदेशों को हमारे पास पहुंचाने वाली है ये तिथि, इसलिए सर्वप्रथम हम इस मोक्षदा एकादशी तिथि परम पावन तिथि को अपनी प्रणति निवेदन करते हैं। और इस तिथि पर आज दो भक्तजन भगवान कृष्ण की शरण में जाने के लिए प्रस्तुत हैं, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इस दीक्षा विधि की क्या आवश्यकता है। ऐसे भगवान के नाम से संबंधित मंत्र भी उपलब्ध हैं। भगवान का नाम जो हरि नाम प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था वो भी उपलब्ध है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय भगवान के इन नामों का कीर्तन कर सकता है। तो फिर दीक्षा की क्या आवश्यकता है? हम चाहे वे किसी भी समय भगवान का नाम जप माला में कर सकते हैं, कीर्तन में कर सकते हैं, और ऐसे तो भारतवर्ष में बहुत सारे लोग भगवान का नाम कीर्तन करते ही है, किंतु इसमें कुछ अंतर है कि जो लोग भगवान का नाम कीर्तन करते हैं श्रद्धावश, किंतु ये लोग पाप कर्मों से मुक्त नहीं है। कभी कभी देखा जाता है लोग अष्ट प्रहर नाम यज्ञ करते हैं और उस नाम यज्ञ के भीतर जाकर कोई बीड़ी पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, कोई गंजा पी लेता है। इसका अर्थ उनको ज्ञान नहीं है कि ये सब निषिद्ध कर्म है और भगवान की भक्ति के लिए सहायक नहीं है। ये केवल श्रद्धावश भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, किंतु उसके साथ साथ हमें ये जानना भी आवश्यक है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पाप कर्म है, क्या पुण्य है, और क्या भक्तिमूलक कर्म है। इसके संबंध में ज्ञान होना ये बहुत आवश्यक है, तब जाकर हम पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं और शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति में संलग्न हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि जब तक कोई व्यक्ति गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण नहीं करता है, वो मंत्र फल प्रसू या प्रभावशाली नहीं होता है, मंत्र का फल उसको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कोई बाजार में जाकर कोई किताब खरीद ले और उससे मंत्र पढ़ ले तो उसका कोई लाभ नहीं है। ये प्रामाणिक गुरु के मुख से उस मंत्र को श्रवण करना चाहिए कानों में, और विशेष रूप से दक्षिण कान में श्रवण करना चाहिए गुरु के मुख से मंत्र, तब जाकर वो प्रभावशाली होता है। और इस दिव्य ज्ञान को हमें प्राप्त होना भी आवश्यक है। मंत्र के साथ भगवान के संबंध में जो दिव्य ज्ञान है उसको भी प्राप्त होना आवश्यक है। और ये दिव्य ज्ञान हम केवल बाजार के ग्रंथों से प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो बाजार में भी डॉक्टरी ग्रंथ उपलब्ध है, कोई खरीद के पढ़ सकता है और अपने को डॉक्टर बोल सकता है। किंतु वस्तुतः यदि कोई प्रामाणिक डॉक्टर किसको बनना है तो उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना पड़ेगा, वहां शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा और जो प्रैक्टिकल वहां सिखाया जाता है उसको भी करना पड़ेगा। हाउस सर्जनशिप जो है उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, तब जाकर कोई सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, प्रामाणिक डॉक्टर बनता है। तो हर कार्य के लिए एक प्रामाणिक विधि होती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में हमें एक प्रामाणिक भक्त बनने के लिए, वैष्णव बनने के लिए ये प्रामाणिक विधि शास्त्र में बताई गई है। पद्म पुराण में उल्लेख है, संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते निष्फलामता। जो लोग प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से मंत्र ग्रहण नहीं करते हैं, इधर उधर जाकर मंत्र ले लेते हैं, जो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय नहीं है, तो पद्म पुराण में बताया गया है कि वह मंत्र निष्फल होता है। जैसे आजकल गायत्री मंत्र ये तो उसका बाजार में उपलब्ध है, उसका रिकॉर्ड सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग जानते हैं आजकल गायत्री मंत्र, और सुंदर ढंग से गाया भी गया है। क्या उसको उस मंत्र का गान या जप करने से इप्सित फल प्राप्त हो सकता है? नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि ये मंत्र ग्रहण करने की विधि नहीं है। तो ये पद्म पुराण में उल्लेख है कि संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते निष्फलामता। बिना संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय से मंत्र ग्रहण करने से, चाहे वो अपने को कोई गुरु घोषित करे, कोई अपने को भगवान भी घोषित करे, कुछ फल प्राप्त होने वाला नहीं है उस मंत्र से। इसलिए गुरु प्रामाणिक संप्रदाय में आना आवश्यक है, और प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय ये चार बताए गए, ये पद्म पुराण में ही बताया गया है। अथ कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनः, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षितिपावन। चत्वारस्ते कलौ भव्यात् उत्कले पुरुषोत्तम, ये पद्म पुराण में उल्लेख है कि कलयुग में ये चार प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय होंगे। अथ कलो भविष्यन्ति, ये भविष्यवाणी की गई है पद्म पुराण में। पद्म पुराण 5000 वर्ष पहले लिखा गया था, कलयुग के प्रारंभ में श्री व्यासदेव ने लिखा था, तो उस समय उसमें भविष्यवाणी की गई है। अथ कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायन, तो कलयुग में चार वैष्णव संप्रदाय होंगे भविष्य में। और ये चार वैष्णव संप्रदाय कौन कौन है ये भी जानना आवश्यक है, तो उसी पद्म पुराण में बताया गया है कि श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव कृति पावन, ये चार वैष्णव संप्रदाय होंगे। एक तो श्री संप्रदाय, ये प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय, श्री अर्थात लक्ष्मी। तो भगवान के संबंध में लक्ष्मी देवी से कौन और अधिक ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मी देवी भगवान की पत्नी है, भगवान के संबंध में सब कुछ जानती है, तो उनसे जो ज्ञान की परंपरा आती है वो प्रामाणिक परंपरा है। और उस परंपरा में श्री रामानुजाचार्य आधुनिक काल के महान आचार्य हुए, इसलिए रामानुज संप्रदाय ये प्रामाणिक संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी, हम कल ब्रह्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा ने कैसे भगवान से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए ब्रह्मा के माध्यम से जो ज्ञान की परंपरा आ रही है वो ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और इस संप्रदाय में जो प्रमुख आचार्य हुए हैं वो है मध्वाचार्य, इसलिए मध्वाचार्य संप्रदाय ये एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है। और उस मध्वाचार्य संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी हुए, ये मध्वाचार्य संप्रदाय के माधवेंद्रपुरी थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, और उनके शिष्य हुए ईश्वरपुरी, श्रीपाद ईश्वरपुरी, और श्रीपाद ईश्वरपुरी के शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भक्त के रूप में, तो उन्होंने इस माध्वाचार्य संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण की श्रीपाद ईश्वरपुरी से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो लोग आते हैं ये प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय भी है। तो हमारा जो इस्कन है हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु या माध्वाचार्य की परंपरा में आते हैं, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, ये एक प्रामाणिक संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, रुद्र अर्थात शिवजी, शिवजी भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, इसलिए शिवजी भगवान के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो शिवजी के माध्यम से जो ज्ञान की परंपरा आ रही है उस परंपरा में आधुनिक काल के प्रमुख आचार्य हुए विष्णु स्वामी, और उसी विष्णु स्वामी संप्रदाय में बाद में बल्लवाचार्य भी आए, इसलिए आजकल उसको बल्लव संप्रदाय भी कहते हैं, किंतु वस्तुतः तो वो विष्णु स्वामी संप्रदाय है, वो भी एक प्रामाणिक संप्रदाय है। और चौथा संप्रदाय जो चतुः कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा से ये लोग ज्ञान प्राप्त हुए थे, और उसके साथ साथ अनंत शेष जो भगवान के गुणगान आदि काल से करते आ रहे हैं, अभी तक समाप्त नहीं कर पा रहे हैं भगवान का गुणगान, तो उस अनंत सत से भी ये चतुर कुमार ज्ञान प्राप्त हुए थे अनंत देव। इसलिए चतुकुमार के माध्यम से जो वैष्णव परंपरा या ज्ञान की परंपरा आ रही है, उस परंपरा में आधुनिक काल के आचार्य हुए निंबार्काचार्य। तो निंबार्क संप्रदाय ये भी एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है। तो कलयुग में ये चार प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है, और इन चार वैष्णव संप्रदायों से किसी भी संप्रदाय से कोई दीक्षा ग्रहण करता है, वैष्णव दीक्षा, वो एक प्रामाणिक दीक्षा है और वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण थे, और कलयुग के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए भक्त के रूप में अवतरित हुए, स्वयं भगवान अपने भक्त के रूप में अवतरित हो रहे हैं, इसलिए अधिकतर लोग चैतन्य महाप्रभु को महान साधु या महान भक्त के रूप में जानते हैं, भगवान के रूप में बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने भक्त का अभिनय किया था यद्यपि वो स्वयं भगवान थे। तो जब निंबार्काचार्य से चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई, कहां पर? नवद्वीप धाम में। तो चैतन्य महाप्रभु ने निंबार्काचार्य से कहा था कि मैं जो चार वैष्णव संप्रदाय हैं, इनमें से जो सार तत्व है, इन चार वैष्णव संप्रदायों की शिक्षा में जो सार तत्व है उसको मैं ग्रहण करूंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने चार वैष्णव संप्रदायों से आठ सार वस्तुओं को ग्रहण किया, दो दो सार वस्तुओं को हर संप्रदाय से ग्रहण किया। इसलिए हम जिस संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय में अन्य जो तीन संप्रदाय और माध्व संप्रदाय, ये चार संप्रदाय का जो सार वस्तु है ये ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय में प्राप्त है। इसलिए जो ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करता है, ये दूसरे संप्रदायों का जो सार है उसको भी इसमें प्राप्त हो जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इन चार संप्रदायों के सार क्या है, उनकी शिक्षाओं का सार क्या है। तो पहले माध्व संप्रदाय को लेते हैं, मध्वाचार्य संप्रदाय। मध्वाचार्य आए थे शंकराचार्य के बाद, क्योंकि जब शंकराचार्य आए उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया, और इस अद्वैतवाद उस समय की आवश्यकता थी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य हैं वो और कोई नहीं थे, स्वयं शिवजी थे, और भगवान के आदेश से शिवजी शंकराचार्य के रूप में आए थे। किंतु शिवजी ने एक बार कहा था पार्वती से कि मायावादं असत्शास्त्रम प्रसन्नं बौद्धं उच्यते। तो आदि शंकराचार्य ने मायावाद का प्रचार किया, अद्वैतवाद जिसको मायावाद भी कहा जाता है, उसका प्रचार किया। तो शिवजी कह रहे हैं पार्वती से कि ये जो मायावाद है ये असत शास्त्र है, ये सत शास्त्र नहीं है। शिवजी स्वयं कह रहे हैं जिन्होंने इसका प्रचार किया कि ये असत शास्त्र है और प्रच्छन्न बौद्ध मतवाद है, क्योंकि बौद्ध मतवाद को खंडन करने के लिए शिवजी आए थे शंकराचार्य के रूप में, क्योंकि उस समय बौद्ध लोग वेदों को नहीं मानते थे और चारों ओर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। तो लोगों को वेद मार्ग में लाने के लिए शंकराचार्य को ये अद्वैतवाद का प्रचार करना पड़ा, लोगों को वेद मार्ग में लाने के लिए। और अद्वैत मार्ग प्रच्छन्न बौद्ध मत है, ये बौद्ध मत से मिला जुला है, जिससे कि लोग आसानी से अद्वैतवाद में आ सके बौद्ध मत से। इसलिए भगवान ने भेजा था शिव जी को। और शिव जी कहते हैं मयेव भीतं देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा। तो शिव जी कहते हैं मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में अवतरित होऊंगा। शंकराचार्य जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे और इस मायावत का प्रचार किया था, किंतु वह असत शास्त्र था। स्वयं शिव जी कह रहे हैं कि सत शास्त्र नहीं था, केवल लोगों को वेद मार्ग में लाने के लिए शंकराचार्य को ऐसे अद्वैतवाद या मायावत का प्रचार करना पड़ा। वो समय की आवश्यकता थी, किंतु लोगों को सत मार्ग में लाने के लिए, भगवान की भक्ति मार्ग में लाने की आवश्यकता थी। यद्यपि शंकराचार्य के प्रचार से सभी लोग अद्वैतवाद को ग्रहण करने लगे और अभी भी अद्वैतवाद का प्रचार है, किंतु भगवान ने वैष्णव आचार्यों को भेजा इस त्रुटि को संशोधन करने के लिए। तो जब मध्वाचार्य आए तो मध्वाचार्य ने सर्वप्रथम अद्वैतवाद का खंडन किया। शंकराचार्य का उपदेश था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत मिथ्या है, और सर्वखलिंदं ब्रह्म, सभी में ब्रह्म विराजमान है। और जो ब्रह्म है, जो जीवात्मा है, वो भी ब्रह्म है और वो परम ब्रह्म से आया है जीवात्मा ब्रह्म। तो शंकराचार्य का मतवाद था कि ये दोनों ब्रह्म एक ही है, केवल बीच में माया का आवरण है। जब माया का आवरण हट जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती, एक एकाकार हो जाता। इसलिए आदि शंकराचार्य, उनका फोटो दिखा होगा, वो एक उंगली दिखाते हैं, एक सब कुछ एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है द्वितीय नहीं है। किंतु जब मध्वाचार्य आए, उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया, तो उन्होंने कहा एक नहीं हम दो है। दो उंगली उन्होंने दिखाई। दो क्या है? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मामेवं सजीव लोके जीवभूत सनातन, कि जो जीवात्मा है, भगवान कृष्ण कहते हैं जीवात्मा मेरा नित्य अंश विशेष है। और नित्य अंश विशेष का अर्थ है कि जीवात्मा कभी विलय नहीं हो सकता परमात्मा में, सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल ये बताया गया, कि जो जीवात्मा जिसको ब्रह्म कहा गया है, ये परम ब्रह्म का भिन्न विभिन्न अंश है, भिन्न अंश है, इसलिए वो मिल नहीं सकता भगवान से, ये नित्य भिन्न है। इसलिए मध्वाचार्य ने कहा कि दो, कि भगवान है और हम उनके अंश, हम भी हैं, हमारी स्थिति भी है, भगवान की स्थिति, ये नित्य स्थिति है। ये जीवात्मा भगवान में या परमात्मा में कभी मिल नहीं सकता, एकाकार नहीं हो सकता। जीवात्मा नित्य अंश होने के कारण वो भगवान की सेवा केवल कर सकता है। तो मध्वाचार्य ने इस मतवाद का प्रचार किया और यही उनका सार भी है। उनके दो सार जो हैं मध्वाचार्य संप्रदाय का, एक है अद्वैतवाद निरसन और दूसरा है कृष्ण मूर्ति नित्य जानी श्रद्धा है सेवन। कृष्ण मूर्ति नित्य है इसलिए श्रद्धा पूर्वक भगवान के विग्रह की सेवा करना, मधुकर स्वयं सेवा करते थे कृष्ण विग्रह की, और उनकी परंपरा में अभी भी आचार्यगण स्वयं सेवा करते हैं भगवान के विग्रह की प्रतिदिन। इसलिए ये जो दो तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया मध्वाचार्य संप्रदाय से। इसलिए हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय में विग्रह पूजा भी है, और हम अद्वैतवाद का खंडन करते हैं। दूसरा संप्रदाय रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य वे भी एक महान वैष्णव हुए, और उन्होंने माध्वाचार्य से आगे बढ़कर सभी जाति के लोगों को वैष्णव बनाया। माध्वाचार्य ने सभी जाति के लोगों को वैष्णव नहीं बनाया, केवल ब्राह्मणों को। इसलिए मध्व संप्रदाय में अभी भी केवल ब्राह्मण लोग ही दीक्षा लेते हैं, किंतु रामानुजाचार्य ने सभी जाति के लोगों को भगवान के भक्त बनने का अवसर प्रदान किया, सभी को वैष्णव बनाया। इसलिए उनका प्रचार और आगे बढ़ा। तो रामानुज संप्रदाय में उनका जो सार है, तो रामानुजाचार्य ने अनन्य भक्ति का प्रचार किया, न अन्य अनन्य, अर्थात केवल भगवान की भक्ति करना है, देवी देवताओं की भक्ति का प्रचार उन्होंने नहीं किया। तो अनन्य शुद्ध भक्ति का प्रचार किया रामानुजाचार्य ने, ये उनके संप्रदाय का सार वस्तु है। और दूसरा, भक्त जन सेवा, वैष्णव सेवा, ये रामानुज संप्रदाय का सार है। वैष्णव जनों की सेवा करना, केवल भगवान की सेवा नहीं, वैष्णवों की भी सेवा करनी, ये भक्ति का एक अंग है। तो रामानुज संप्रदाय से ये दोनों वस्तुओं को, सार वस्तुओं को चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया। इसलिए हमारे संप्रदाय में भी शुद्ध भक्ति का प्रचार है और वैष्णवों की सेवा भी है। तीसरा संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय, शिव जी का जो रुद्र संप्रदाय। विष्णु स्वामी संप्रदाय में दो सार वस्तु जो है कि एक तो है तदीय भाव, कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे प्रभु, हम उनके सेवक हैं, इसलिए हम कृष्ण के हैं। इसका अर्थ है एकांत कृष्ण आश्रय, एकांत रूप से भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करना, ये एक सार वस्तु है। और दूसरा, श्रद्धा पूर्वक राग मार्ग भक्ति, अर्थात राग आसक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा करना, उसमें ये राग मार्ग का प्रचलन ये विष्णु स्वामी संप्रदाय में है। अर्थात स्पंटेनियस लव जिसको बोलते हैं। तो ये विष्णु स्वामी संप्रदाय जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा और एकांत रूप से कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करना, ये दो सार है विष्णु स्वामी संप्रदाय को, उसको चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया। तो हमारे संप्रदाय में भी ये दोनों वस्तु है, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना और कृष्ण के चरणों में एकांत रूप से आश्रय ग्रहण करना। और चौथा संप्रदाय जो निम्बार्क संप्रदाय है, जो कुमार संप्रदाय के अंतर्भुक्त है। तो निम्बाकाचार्य के संप्रदाय में दो सार वस्तु है, एक तो है एकांत राधिकाश्रय, श्रीमती राधारानी के चरणों में एकांत रूप से आश्रय ग्रहण करना, ये एक सार वस्तु निम्बा के संप्रदाय के, और दूसरा सार गोपी भाव। गोपी भाव से भगवान श्रीमती राधारानी और कृष्ण की सेवा करना है, गोपी भाव से, जैसे गोपियां सेवा करती थी उसी प्रकार सेवा करना। तो इन दोनों वस्तुओं को भी चैतन्य महाप्रभु ने हमारे संप्रदाय में ग्रहण किया, इसलिए हमारे संप्रदाय में ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में ये आठ सार वस्तुएं, अन्य वैष्णव संप्रदायों में जो भी सार वस्तुएं हैं ये सभी उपलब्ध हैं हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में। इसलिए हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में हम अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करते, विष्णु स्वामी संप्रदाय या बल्लभ संप्रदाय में वहां राधारानी नहीं है, अकेले कृष्ण की पूजा करते हैं। किंतु हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना है, युगल उपासना, हम केवल कृष्ण के भक्त नहीं है, केवल राधारानी के भक्त नहीं है, हम दोनों के भक्त हैं। यह जानना आवश्यक है जो इस संप्रदाय में दीक्षा ले रहे हैं या दीक्षा ले चुके हैं, उनको ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारी उपासना प्रणाली जो है, विधि है, युगल उपासना प्रणाली, राधा कृष्ण की उपासना, केवल कृष्ण की नहीं है। राधा कृष्ण हमारे आराध्य है। तो इस प्रकार जो लोग ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करते हैं वो अन्य वैष्णव संप्रदायों के सारे सार वस्तुओं को प्राप्त हो जाते हैं, और इस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने से व्यक्ति एक प्रामाणिक वैष्णव के रूप में माना जाता है, और संप्रदाय के मंत्र उसको प्राप्त होता है। और जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उस समय हमें आत्मसमर्पण करना होता है। दीक्षा के समय अग्नि भगवान के विग्रह कृष्ण, वैष्णवगण, गुरु, ये सभी के सामने हमें प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि हम आज से इन नियमों का पालन करेंगे और भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। तो भक्त जब इस प्रकार समर्पित होता है, प्रतिज्ञा करता है समर्पित होने के लिए, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय है। यद्यपि हम संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, किंतु परिवार में कोई भी व्यक्ति हमें मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सभी मृत्यु के अधीन है। इसलिए एकांत रूप से यदि किसी का आश्रय ग्रहण करना है तो हमें राधा कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करना है, वे हमारे आराध्य हैं। तो जब भक्त इस प्रकार मनोवृत्ति लेकर दीक्षा ग्रहण करता है और राधा कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करता है, तो उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्णता के करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त इस प्रकार आत्मसमर्पण करता है तो भगवान कृष्ण ऐसे भक्त को ग्रहण करते हैं और आत्मसम कर देते हैं, अपने समान बना देते हैं, अपना बना देते हैं, अपना मानते हैं भगवान कृष्ण जब भक्त आत्मसमर्पण करता है। इसका अर्थ उसी दिन से हम भगवान के बन जाते हैं, राधा कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, और उसी दिन से दीक्षा के दिन से हमारा गोत्र भी बदल जाता है। हमारे भौतिक संसार में जब हम जन्म ग्रहण करते हैं हमारे परिवार का एक गोत्र होता है, किंतु जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं भगवान राधा कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करते हैं, जिस दिन से हम दीक्षा ग्रहण करते हैं उसी दिन से उसी समय से हमारा गोत्र भी बदल जाता है। हम किसके गोत्र के हो जाते हैं? कृष्ण के गोत्र का हो जाते हैं, कृष्ण के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम इस भौतिक संसार के जो परिवार के सदस्य रहे हैं, दीक्षा के साथ साथ हम कृष्ण के जो बहुत बड़ा परिवार है, आध्यात्मिक परिवार, उसके सदस्य बन जाते हैं और हमारा गोत्र बदल जाता है। इसलिए जो दीक्षित भक्त हैं उनके परिवार में जन्म मृत्यु से जो अशौच लगता है दीक्षित भक्त को नहीं लगता है अशौच, वो उस स्थिति में भगवान की सेवा कर सकता है। तो ये भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करने से हम भगवान कृष्ण के परिवार के सदस्य बन जाते हैं और भगवान कृष्ण की सुरक्षा में रहते हैं, और हम जो मंत्र ग्रहण करते हैं गुरु से जो भगवान के प्रतिनिधि है, हमें यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि गुरु भगवान नहीं है किंतु शिष्य के लिए गुरु को भगवान के समान पूजा करनी चाहिए। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ऐसे गुरु की भी पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। हम भगवान को देख नहीं सकते, भगवान से बातचीत नहीं कर सकते, किंतु भगवान के प्रतिनिधि गुरु से हम बातचीत कर सकते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में हमारी जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं गुरु के माध्यम से, भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसका दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की ओर से गुरु ऐसा कार्य कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं शिष्य को। इसलिए गुरु के आदेश का पालन करना और गुरु के आश्रय में रहना इस शिष्य के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि शिष्य गुरु के आदेश का पालन नहीं करेगा तो गुरु कैसे उसको भगवान के पास जाने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार भगवान की आज्ञा या उपदेश अलंग है उसको हम लंघन नहीं कर सकते, उसी प्रकार गुरु की आज्ञा अलंग है उसका लंघन भी हम नहीं कर सकते। तो इस दीक्षा कार्यक्रम में पहले हरिनाम प्रदान किया जाता है, भगवान का नाम दीक्षा दी जाती है। तो ये प्राथमिक अवस्था है दीक्षा में, पहले हरिनाम को प्राप्त करना गुरु के मुख से, उसके बाद फिर गुरु दीक्षा मंत्र देते हैं, गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं, वो बाद में दिया जाता है, और एक बार दीक्षा होती है उसमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो ये जो हरिनाम है इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रवर्तन किया है, कलि संतरण उपनिषद से इस महामंत्र को लेकर उन्होंने प्रचार किया। यद्यपि यह महामंत्र पहले से है किंतु कलियुग के लिए भगवान का नाम एकमात्र आश्रय है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र का प्रचार किया और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ा वरदान भी प्रदान किया इस महामंत्र के जप और कीर्तन में। और वह वरदान क्या है कि कोई भी व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करता है तो वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है। इस वरदान को भगवान के किसी भी अवतार ने किसी भी समय प्रदान नहीं किया था, ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष वरदान है कि लोग इस महामंत्र का कीर्तन करने से भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष वरदान है। और इसके साथ साथ ये तो श्रेष्ठ वरदान है, और हरिनाम कीर्तन का या जप का ये मुख्य फल है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, किंतु इसके साथ साथ कुछ आनुषंगिक फल भी है। हरिनाम कीर्तन का आनुषंगिक फल है, ये शास्त्रों में बताया गया है। जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, कि संसार में हम जो दुख भोग करते हैं अपने पाप कर्मों के कारण, पिछले जन्मों में हम कई पाप कर्म किए हैं उसके कारण हमें दुख भोग करना पड़ता है, किंतु जब हरिनाम का जप या कीर्तन करते हैं भगवान का नाम लेते हैं तो ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अजामिल के साथ हुआ था, बहुत बड़ा पापी था किंतु मृत्यु के समय पुत्र को पुकारते हुए भगवान का नाम ले लिया था तो सारे पापों से मुक्त हो गया अजामिल भगवान के नाम लेने पर। यद्यपि वो भगवान को पुकार नहीं रहा था किंतु नाम तो भगवान का था, इसलिए भगवान के नाम की ये महिमा है, नाम जप या कीर्तन करने की ये महिमा है कि हम पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है, यदि हम कभी वैष्णव अपराध करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वैष्णव अपराध कितना मारात्मक होता है, डेंजरस, उससे हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचने के लिए हमें बताया गया है, हम नित्य प्रति नाम अपराध में ये वैष्णव अपराध को गिनते हैं और उससे दूर रहने के लिए हमें सावधान रहना पड़ता है। तो ये वैष्णव अपराध बहुत मारात्मक है, भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इससे बचने के लिए हम तो सतर्क रहते हैं किंतु कभी कभी हमसे हो जाता है वैष्णव अपराध, जाने या अनजाने। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं और या क्या करना चाहिए हमें, हमें उस वैष्णव के पास जाकर उसे क्षमा याचना करनी चाहिए कि प्रभु जी हमारी ऐसी गलती हो गई, हमें क्षमा कर देना, उनको प्रणाम करके ये बात बोलना है। और वो वैष्णव क्षमा कर सकते हैं, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जिस वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया है वो वैष्णव कहीं चले गए हैं, वो उपलब्ध नहीं है, क्षमा याचना के लिए उपलब्ध नहीं है, या कभी अनजाने में किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया है, हमें पता भी नहीं। और कभी कभी ऐसे भी वैष्णव हैं जो बहुत क्रोधित होते हैं हमारे अपराध के कारण और हम क्षमा याचना करने पर भी वो शांत नहीं होते। हम हर तरह से प्रयास करते हैं क्षमा याचना के लिए, फिर भी शांत नहीं होते हैं। क्या उस समय हम क्या करेंगे? हमने तो प्रणाम किया उनसे, क्षमा याचना की, फिर भी शांत नहीं है। तो उस समय हमें हरि नाम का आश्रय लेना, और हरि नाम में वो शक्ति है जो वैष्णव अपराध का क्षालन भी कर सकते हैं। किंतु हरि नाम लेते समय अनुताप में व्यक्ति को दग्धीभूत होना है, व्यक्ति को अनुताप करना है, पश्चाताप करना है कि हमने ऐसा वैष्णव अपराध किया, वो वैष्णव अभी तक शांत नहीं हुए, मैं कितना पापी हूं, अपराधी हूं, ये सोच करके, अपने को धिक्कार करके, पश्चाताप और धिक्कार करके भगवान का नाम लेना चाहिए। ये नहीं है कि चलो हमने तो उनसे क्षमा याचना की, उन्होंने क्षमा नहीं किया तो हम क्या करेंगे। हम अब भगवान का नाम लेते हैं, प्रतिदिन जप करते हैं, लेंगे, ऐसा भाव नहीं है। हमें पश्चाताप करना है कि हमने ऐसा अपराध क्यों किया और आगे हम कैसे नहीं करेंगे। हम वैष्णव को शांत नहीं कर सके क्षमा याचना से, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। तो इसलिए उस वैष्णव के चरणों में क्षमा याचना करना, भगवान के चरणों में क्षमा याचना करना, क्योंकि भगवान वैष्णव अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए पश्चाताप करना है और भगवान का नाम लेना है इस स्थिति में। किंतु पहले यदि वैष्णव उपलब्ध है, पहले जाकर क्षमा याचना करना है, उनको प्रणाम करके क्षमा याचना करना है। तो ये हरिनाम हमें वैष्णव अपराध से मुक्ति दिला सकते हैं यदि हम पश्चाताप कर रहे हैं और आगे ऐसा अपराध हम नहीं कर रहे हैं। और वैष्णव ये हरिनाम इतने शक्तिशाली हैं कि यदि हम रोगग्रस्त हुए हैं तो रोगग्रस्त होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, किंतु बहुत पैसा खर्च करने पर भी, मेडिसिन लेने पर भी हमारा रोग ठीक नहीं होता, तब हम क्या करें? अधिक से अधिक हम डॉक्टर के पास जाएं और मेडिसिन लें, मेडिसिन लेने पर भी रोग ठीक नहीं होता, तो उस स्थिति में हम क्या करें? हमें हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। और ये हरि नाम में इतनी शक्ति है कि हमारी सारी बीमारियों को, रोगों को वो दूर कर सकते हैं। हरि नाम इतने शक्तिशाली है, भगवान के नाम, जो पापों को दूरीभूत कर सकते हैं, रोगों को भी दूरीभूत कर सकते हैं। ये हरिनाम में ये शक्ति है। तो इसलिए कहा गया है कि ये बृहत नारदीय पुराण में सर्वरोग उपशम सर्व उपद्रवनाशनम, ये हरिनाम के लिए कहा गया है। सर्वरोग उपशम सर्व उपद्रवनाशनम, सारी विपत्तियों से यह हरिनाम व्यक्ति की रक्षा भी कर सकते हैं, रोगों से रक्षा कर सकते हैं, विपत्तियों से भी रक्षा कर सकते हैं। कभी कोई विपत्ति में पड़ा है और जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण उच्चारण कीजिए, वो विपत्ति चली जाएगी। भगवान के नाम में ये शक्ति है, भगवान सुरक्षा देते हैं। जब हम हरि नाम करते हैं, हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा वलय की सृष्टि हो जाती है, एक सुरक्षा वलय, प्रोटेक्टिव रिंग, हमारे चारों ओर बन जाता है। बहुत सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा होती है, हमको पता भी नहीं चलता कैसे भगवान हमारी रक्षा करता है। इसलिए हरिनाम पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए और ये हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। पहले हम भगवान का जो नाम कीर्तन के लिए हमने जो प्रतिज्ञा की है, प्रतिदिन 16 माला जप करना, पहले उसको समाप्त करें, बाद में दूसरा काम। उसको महत्व प्रदान करना चाहिए, भगवान के नाम जप को महत्व प्रदान करना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले दूसरा काम करते हैं, हरिनाम जप को लास्ट में रखते हैं, समय बचेगा तब करेंगे। इसका अर्थ है कि हम हरिनाम को महत्व नहीं दे रहे हैं और दूसरे काम को महत्व दे रहे हैं, तो ये हरिनाम के प्रति अपमान है जब हम हरिनाम को महत्व नहीं दे रहे। इसलिए सुबह उठकर अपनी नित्य क्रिया समाप्त करने के बाद सर्वप्रथम कार्य हमारा क्या होना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिनाम को हम महत्व देना सीखें, तब जाकर हरिनाम का जो फल है हम प्राप्त होंगे। हरिनाम पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पुनः कहा गया कि हरिनाम कीर्तन से जहां कहीं भी भूत प्रेत होते हैं ये सब भाग जाते हैं। भूत प्रेत भगवान का नाम श्रवण नहीं कर सकते, वो डरते हैं भगवान के नाम से। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं यहां पर भूत निवास कर रहा है, वहां कोई नहीं रह रहा है, भूत कोठी है। किंतु उस भूत कोठी में आप जाइए और हरिनाम संकीर्तन करिए, भूत भाग जाएगा उधर, भूत नहीं रहेगा उधर। एक बार भक्तिविनोद ठाकुर ने भी ऐसा किया था, एक वृक्ष में ब्रह्म राक्षस रहता था और बहुत परेशान करता था लोगों को। लोगों ने जब भक्तिविनोद ठाकुर से कहा तो भक्तिविनोद ठाकुर गए और उस वृक्ष के नीचे भागवत पाठ करने लगे। तो वृक्ष की डाली टूट पड़ा और ब्रह्मराक्षस वहां से भाग गया सदा के लिए। तो ये जो हरिनाम करता है उसको इसलिए भूत प्रेत का डर स्वयं को नहीं रहता है, या कहीं भूत प्रेत है उसको भगा सकता है। ये ट्रिक है भूत प्रेतों को भगाने का, आप हरिनाम संकीर्तन करिए वहां, न तो भूत प्रेत अपने पास आएंगे और न उस स्थान पर रहेंगे जहां हरिनाम संकीर्तन होता है। ये हरिनाम की महिमा। और जो लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये हरिनाम के और एक प्रभाव है कि जो व्यक्ति हरिनाम का संकीर्तन कर रहा है उस व्यक्ति पर कलियुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कभी कभी देखा जाता है कि भक्तगण कलि का चेला बन जाते हैं। ये कैसे संभव है, क्योंकि जब हरिनाम संकीर्तन होता है कलि डर जाता है, अरे ये भक्तगण सब हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं तो हमारा जो पापाचार ये नहीं चलेगा। कलि डर जाता है, भयभीत हो जाता है। इसलिए कलि चाहता है कैसे ये भक्तों का जो संगठन है, जो प्रचार कार्य है, उसमें बाधा उत्पन्न करे, आपस में भक्त लोगों को लड़ा दे। कलि की ये इच्छा है। और कलि कैसे प्रवेश करता है, वो देखता है कौन दुर्बल भक्त है, वीक डिवोटी, जो हरिनाम को महत्व नहीं देता है, पहले दूसरा काम करता है, बाद में चलो थोड़ा जप करना है कर लेंगे. सो वीक डिवोटी, दुर्बल डिवोटी है, हरिनाम पर विश्वास नहीं है. कली ऐसे भक्तों को अपना चेला बना लेता है और वही भक्त लोग दूसरों के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं. इसलिए कभी कभी देखा जाता है भक्त भक्तों में मतभेद, लड़ाई, झगड़ा, ये कली के कारण. यदि हम हरिनाम को महत्व देंगे, हरिनाम पर दृढ़ विश्वास रहेगा और हम हरिनाम करते रहेंगे तो कली हमें, हम पर प्रभाव नहीं डाल सकता. यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कली को हम चांस दे रहे हैं अपना प्रभाव डालने के लिए हमारे ऊपर. तो ये हरिनाम का एक महत्व कि जो व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है उसके ऊपर कली का प्रभाव नहीं पड़ता. पुनः कहा गया है यह हरिनाम जो है ये सारे वेदों का सार है. यदि किसी ने सारे वेदों का सार प्राप्त किया है तब जाकर वो हरिनाम संकीर्तन करता है. कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि आप लोग तो वेदों का अध्ययन नहीं करते हैं, केवल मृदंग करताल लेके आप हरिनाम संकीर्तन करते हैं और नाचते रहते हैं, नृत्य और कीर्तन. किंतु वेदों का तो अध्ययन नहीं करते हैं भक्त लोग. कभी कभी हमारे भक्तों के मन में भी ये प्रश्न उठता है. एक बार एक भक्त ने हमें भी पूछा. उसने पूछा कि महाराज हम लोग तो इतने त्याग तपस्या नहीं करते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं, हम लोग तो वेद पाठ नहीं करते हैं. तो हमने कहा कि तुमने वेद पाठ समाप्त कर लिया है इसलिए हरिनाम संकीर्तन कर रहे हो. त्याग तपस्या सब कर लिया है पूर्व जन्म में. और जो वेद पाठ कर रहे हैं अभी, आप जाइए उनके पास, आप उनको कहिए आप हरिनाम संकीर्तन कीजिए, वो कभी भी नहीं करेंगे. वो वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे किंतु हरिनाम संकीर्तन नहीं करेंगे. जो तपस्या कर रहे हैं उनको जाके बताइए कि आप क्यों इतने कठोर तपस्या कर रहे हैं, आप केवल हरिनाम संकीर्तन करिए, वो नहीं करेंगे. क्योंकि वो स्थिति में नहीं पहुंचे हैं तपस्या की पूर्णता या वेदों अध्ययन की जो पूर्णता है उसमें नहीं पहुंचे, उस पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंचे. हम लोग पहुंच चुके हैं, पूर्व जन्म में कितने त्याग तपस्या कर चुके हैं, वेद अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए हम इस स्थिति में आए हैं कि हम हरिनाम संकीर्तन कर पा रहे हैं. क्योंकि ये सारे वेदों का सार है. और जो लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ये हरिनाम की बहुत सारी महिमाएं हैं, हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं. जो लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं उन लोगों को किसी भी तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है. क्यों? क्योंकि केवल हरिनाम संकीर्तन से ये लोग सारे तीर्थ स्थान भ्रमण का फल एक स्थान में रहकर भी प्राप्त हो सकते हैं. सर्व तीर्थ फलप्रद, जो हरिनाम संकीर्तन है सारे तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है. केवल हरिनाम संकीर्तन से सारे तीर्थ भ्रमण का फल मिल जाता है. पुनः हम लोग जो पुण्य कर्म कर रहे हैं तो तरह तरह के पुण्य कर्म करते हैं और आशा करते हैं कि इस पुण्य कर्म के फल स्वरूप हमें कुछ सुख प्राप्त होगा. किंतु केवल हरिनाम संकीर्तन से सारे पुण्य कर्मों का फल भी हमें प्राप्त हो जाता है और सुख प्राप्त हो जाता है, तो अलग से पुण्य कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, और इस हरिनाम संकीर्तन जब भगवान के नाम है, भगवान ने अपने दिव्य नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी है, इसलिए कहा गया है कि भगवान का नाम भगवान से भी अधिक कृपामय है। जो भगवान का नाम जप या कीर्तन करते हैं, ये भगवान की कृपा प्राप्त हो जाते हैं, नाम प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाते हैं। और इस दिव्य नाम को जप करने के लिए या कीर्तन करने के लिए कोई नियम भी नहीं है। आप किसी भी समय किसी भी स्थान पर भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं, किंतु बाकी काम के लिए आपको स्थान नियम ये सब लागू है। कोई तपस्या करेंगे, कुछ करेंगे, वेद पाठ करेंगे, उसमें कई प्रकार के नियम है, किंतु भगवान के नाम कीर्तन में कोई नियम नहीं है। कोई स्थान काल पात्र इसकी पाबंदी नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है कि इसी स्थान पर जप करना है, इसी समय करना है, किसी भी समय कर सकते हैं। हम जो समय बता रहे हैं प्रातः काल भगवान का नाम जप करने के लिए, आपका 16 माला जप करने के लिए, जो हम प्रतिज्ञा करते हैं 16 माला करने के लिए प्रतिदिन, इसलिए उसको हम कह रहे हैं कि सुबह आप 16 माला जप कर लीजिए, दिन भर आप टेंशन मुक्त रहेंगे और दूसरे काम कर सकते हैं। और यदि सुबह आपका माला समाप्त नहीं हुआ, दिन भर और दूसरे सारे काम आ जाएंगे, आपको माला समाप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो प्रतिज्ञा है उसको पूरी करने के लिए प्रातःकाल कर लेना अच्छा है, अन्यथा कोई किसी भी समय जप कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, किंतु अपने जप जो है पहले उसको समाप्त कर दीजिए, बाकी समय आप भगवान का नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि 16 माला हमारा हो गया तो दिन भर और भगवान का नाम हम नहीं लेंगे, ये हम भूल जाते हैं, माला हो गया रख देते हैं माला, चलो आज मुक्त हो गया हूं। तो हमें स्मर्तव्य सततं विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित, भगवान का स्मरण सदा सर्वदा 24 घंटे करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, मुख से निकलना चाहिए, एक मुहूर्त के लिए भी भूल जाना नहीं चाहिए। तो अपने जो माला है 16 माला जिसके लिए हमने प्रतिज्ञा की है उसको तो समाप्त हम कर देंगे, ठीक है, बाकी समय हम मुख से भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का स्मरण मन में कर सकते हैं, जब माला जप नहीं कर रहे हैं उस समय ये सब कर सकते हैं। ये नहीं है कि माला जप हो गया और हम भूल गए भगवान को भी, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ये हरि नाम कृष्ण से अभिन्न है और परम आश्रय है, और ये हरि नाम व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है, संसार के दुखों से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। और भगवान के अनंत नाम है, इन अनंत नामों में ये बताया गया है कि यदि व्यक्ति 1000 बार भगवान विष्णु का नाम लेता है तो 1 राम नाम लेने के समान होता है। और तीन बार राम नाम लेने पर एक कृष्ण का नाम लेने के साथ समान होता है, कारण भगवान के अनंत नामों में कृष्ण नाम मुख्य माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि नामनां मुख्यतमं नामं श्रीकृष्णाक्ष परंतप। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मेरे समस्त नामों में जो मुख्य नाम है ये श्री कृष्ण है। तो कृष्ण नाम मुख्य नाम है, इसलिए हम जब हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो हरे कृष्ण, हरा ये भगवान की शक्ति है और संबोधन में हरा हरे हो जाता है। तो भगवान की शक्ति अल्लादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं वस्तुतः हम राधा कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, और कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक और राम का अर्थ है सर्व आनंद प्रदायक। तो इसलिए हम जब हरे कृष्ण हरे राम कहते हैं, राधा रानी हे कृष्ण आप सर्व आकर्षक हैं, सर्व आनंद प्रदायक हैं, आपकी सेवा में हमें नियुक्त कीजिए, यही प्रार्थना करते हैं। भगवान को जब पुकारते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं। ये जो नाम कीर्तन ये भगवान को पुकारना है, राधा कृष्ण को पुकारना है। और हम कितना व्याकुल होकर पुकारते हैं तो भगवान उसके अनुसार हमारी पुकार को सुनेंगे। यदि हमारी पुकार में व्याकुलता नहीं है तो भगवान थोड़ा प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है अभी तो व्याकुलता नहीं आई इसके। जैसे शिशु रोता है तो शिशु पहले रोता है तो मां तुरंत नहीं आती है, वो प्रतीक्षा करती है, वो देखती रहती है कि अभी रो रहा है अभी चुप हो जाएगा तो ठीक है हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मां दूसरे काम करती रहती है घर में माता। और शिशु यदि बार बार रोता रहेगा और जोर जोर से चिल्लाएगा तो माता और रह नहीं पाएगी, उसको सारा काम छोड़कर आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं हमारी पुकार एक शिशु के क्रंदन जैसा होना चाहिए। जैसे शिशु रोता है माता के लिए, उसी प्रकार भक्त अपने आराध्य राधा कृष्ण के लिए रोएगा ये हरिनाम संकीर्तन करते हुए, तब वो राधा कृष्ण की कृपा तुरंत प्राप्त होगी। ये सरल साधन है। तो इस नाम जप में इस नाम जप की महिमा बताई गई है और हरिनाम की महिमा के साथ साथ इस हरिनाम संकीर्तन करने के लिए हमें कुछ नियमों का भी पालन करना है। तो हरिनाम संकीर्तन के लिए या हरिनाम संकीर्तन को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें कुछ अपराधों से मुक्त रहना है। जो 10 नाम अपराध बताए गए इन अपराधों से बचकर हम भगवान का नाम संकीर्तन करें, तब उसका जो फल है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम नंबर जो अपराध है ये बताया गया है कि जो साधु वैष्णव जन भगवान के नाम की महिमा के प्रचार में लगे हुए हैं उनकी निंदा करना, ये प्रथम नंबर नाम अपराध बताया गया, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर प्रोपागेशन ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो जो भक्तजन समर्पित है भगवान के नाम प्रचार में, उनकी निंदा करना ये अपराध माना गया है और उससे बचना है। जो हरिनाम संकीर्तन का फल प्राप्त करना चाहते हैं, इस अपराध से बचना है। और दूसरा नंबर नाम अपराध, टू ब्लास्फेम द वैदिक स्क्रिप्चर्स आर इन पर्सन विथ वैदिक वर्सन, नो नो चौथा है, हाँ दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि जो देवतागण है उनकी निंदा करना, ये उनके भगवान विष्णु के नाम के समकक्ष या स्वतंत्र समझना, ये दूसरा नंबर नाम अपराध है। कभी कभी कोई सोचेगा कि कृष्ण का नाम लेने के स्थान पर हम शिव जी का नाम लेंगे या ब्रह्मा का नाम लेंगे, ये सब एक ही है, समान है, यह अपराध बना गया है। या ब्रह्मा या शिव का नाम स्वतंत्र है भगवान से, ये भी अपराध माना गया है, क्योंकि ब्रह्मा और शिव का जो नाम है वस्तु तो यह भगवान का नाम है, भगवान ने दिया है ये नाम उनको, किंतु ये स्वतंत्र नहीं है भगवान से। ब्रह्मा और शिव और देवतागण वो भगवान के अधीन है, भगवान के समकक्ष नहीं है। तो यदि कोई समान समझता है या स्वतंत्र समझता है, कोई लोग कहते हैं कि शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, तो यह अपराध माना गया है। तीसरा है आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, अवमानना करना, और आध्यात्मिक गुरु को सामान्य मनुष्य समझना। तो ये तीसरा नंबर नाम अपराध माना गया है, जिससे हरिनाम संकीर्तन का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भक्त को गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए सावधान रहना आवश्यक है। चौथा है वैदिक शास्त्रों की निंदा करना या वैदिक शास्त्रों के अनुगामी शास्त्रों की निंदा करना, क्योंकि ये सब भगवान के मुख निश्रित वाणी है। तो शास्त्रों की निंदा करने का अर्थ है भगवान की निंदा करना, यह अपराध माना गया है। और पंचम नंबर जो नाम अपराध है, वो भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। जो नाम की महिमा हम अभी बता रहे थे, कोई सोचेगा कि ये सब काल्पनिक है, ये वस्तु तो सत्य नहीं है, ये भी अपराध माना गया है। और षष्ठ नंबर नाम अपराध है कि भगवान के नाम का अर्थ अर्थांतर करना, तरह तरह के लोग भगवान के नाम का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जब बल्लभाचार्य गए थे, न कौन गया था, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बल्लभाचार्य, और उन्होंने कहा कि हमने भगवान के नाम का हाँ बहुत सुंदर अर्थ निकाला। तो चैतन्य महाप्रभु ने बल्लभाचार्य के अर्थ को नहीं सुना, भगवान के नाम के जो कई अर्थ वो निकाले थे उसको नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं तो एक ही अर्थ जानता हूं भगवान के नाम का, और वो क्या है कि कृष्ण श्याम सुंदर है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण, मैं उन्हीं को ही जानता हूं और कुछ नहीं जानता। इसलिए नाम का अर्थ अर्थांतर करना, कुछ अपनी विद्वता दिखाने के लिए अलग अलग अर्थ निकालना, यह भी अपराध माना गया है। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को ब्रजन नंदन कृष्ण ही मानते थे, श्याम सुंदर कृष्ण और कुछ नहीं। इसलिए नाम का अर्थ अर्थांतर करना, अपनी विद्वता प्रकट करना, ये अपराध माना गया। सप्तम नंबर नाम अपराध कि नाम के बल पर पाप कार्य करना। कोई सोचेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि नाम जप करने से, कीर्तन करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज ने कहा अभी अभी तो हम नाम जप करते रहेंगे और अपना जो पाप कर्म है उसको भी करते रहेंगे, तो जो ये पाप कर्म हमारा नाम जप से समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर हम पाप कर्म करेंगे, फिर नाम जप करेंगे, ये कट जाएगा। तो ये अपराध माना गया है, नाम के बल पर पाप कर्म करना। एक बार हम अनजाने में पाप कर्म किए हैं और नाम जप करके हम उसको काट देते हैं, किंतु दूसरी बार पाप कर्म में लिप्त नहीं होना है। और दूसरी बार यदि हम लिप्त होते हैं क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं, तब ये अपराध माना गया है और उससे नाम का फल नहीं मिलेगा। और जो अष्टम नंबर नाम अपराध है, उसमें जैसे हम वैदिक कर्मकांड पद्धति में सब कर्म करते हैं, पुण्य कर्म, यदि हम नाम जप को वैदिक कर्मकांडों के पुण्यकर्म में एक मानेंगे, पुण्यकर्म के समान है, ये भी अपराध माना गया है। ये कोई पुण्य कार्य नहीं है भगवान का नाम जप करना, ये तो प्रेम प्रदान करने वाला है, कृष्ण प्रेम। और नवम नंबर अपराध जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उनको नाम की महिमा के बारे में बोलना, ये भी अपराध माना गया। किंतु हम लोगों के लिए ये बहुत कठिन स्थिति है। हम लोग जब प्रचार करते हैं, हम नहीं जानते हैं ऑडियंस में कितने लोग श्रद्धालु हैं, किंतु हम नाम की महिमा बताते हैं। अभी अभी हमने बताया तो ये अपराध माना गया है। तो भक्तजन ये रिस्क लेते हैं भगवान के नाम के प्रचार के लिए, हम लोगों को ये रिस्क लेना पड़ता है कि अश्रद्धालु व्यक्ति के सामने नाम की महिमा बता रहे हैं। उससे क्या होता है अश्रद्धालु व्यक्ति के सामने नाम की महिमा बताने पर, कि जो नाम के प्रति श्रद्धा जिसकी नहीं है, जो विश्वास नहीं करता है, उसके सामने हम जब नाम की महिमा बताएंगे तो उसका जो अविश्वास है नाम के ऊपर उसमें वृद्धि होगी। वो सोचेगा कि ये लोग तो सब ऐसे ही बोलते रहते हैं नाम की महिमा के बारे में, इसका कुछ होने वाला नहीं है, और अपराध करेगा। एक तो नाम पर विश्वास नहीं है, हम उसके सामने नाम की महिमा बताएंगे तो उसका अविश्वास और बढ़ता जाएगा। इसका अर्थ है कि हम उसको सहायता कर रहे हैं नाम पर अविश्वास करने के लिए या उसमें वृद्धि होने के लिए, अपराध करने के लिए नाम के चरणों में हम उसको सहायता कर रहे हैं उसके सामने नाम की महिमा बताकर। ये बहुत बड़ा रिस्क है, फिर भी हम इस रिस्क को लेते हैं जो कि अपराध माना गया है चैतन्य महाप्रभु के आदेश से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाएं गुरु है या तारा यही देश। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि तुम जिस किसी को देखो कृष्ण का उपदेश के बारे में बता, और इस प्रकार गुरु होकर सारे देशों के लोगों को उद्धार कर। तो ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश के पालन करने में हमें जो त्रुटि होती है, चैतन्य महाप्रभु भी हमें क्षमा करेंगे, इस अपराध से हमें मुक्ति दिलाएंगे कि हम अश्रद्धल व्यक्तियों के सामने नाम की महिमा बता रहे हैं। ये नवम अपराध माना गया है। यदि हमें पता है कुछ लोग अश्रद्धालु हैं तो उस समय हमें नहीं बोलना चाहिए, किंतु जब जनरल ऑडियंस है, हमें पता नहीं किसने कितने श्रद्धालु कितने अश्रद्धालु, तो उस समय हम चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाएंगे और चैतन्य महाप्रभु हमारे हमें क्षमा करेंगे। और जो दसम नंबर नाम अपराध है, इसमें नाम की महिमा के बारे में इतना कुछ सुनने के उपरांत भी हम भौतिक आसक्ति को बनाए रखते हैं। तो ये भी अपराध माना गया है कि नाम की महिमा का हम श्रवण करते हैं फिर भी हमारी भौतिक आसक्ति बनी रहती है, और नाम जप के समय हम सावधान नहीं रहते हैं, अन्य मनस्क रहते हैं, ये भी अपराध माना गया है। तो इससे निवृत्त रहना, जो हरिनाम के लाभ, हरिनाम करने का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इन अपराधों से मुक्त रहना है और नित्य प्रति ध्यान पूर्वक भगवान के नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है, हरिनाम कीर्तन करने का, जप करने का, और सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है, कृष्ण प्रेम, उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो हम यही समाप्त करते हैं जो हमें बोलना था इस दीक्षा यज्ञ से पहले। अब हम बुलाएंगे जो लोग दीक्षा लेंगे, और उन लोगों को प्रतिज्ञा करना होगा, और वो दीक्षा नाम भी प्राप्त होंगे। उसके पश्चात हमारे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान होगा, यज्ञ में बैठेंगे। उसके पहले उनकी कंठी माला बदलना चाहिए, नया कंठी माला पहनना चाहिए। हाँ, तो ये कंठी माला भगवान को अर्पित है ना, हाँ, तो कोई पहना दीजिए उनको कंठी माला, माता जी आप लोग पहना दीजिए, और फूल की माला है उन दोनों को दीजिए। और पुराना कंठी माला निकाल दीजिए और नया कंठी माला लगाइए। जप माला कहाँ है मोहन कृष्ण? जप माला दिया था ना बैग में। वो माला पहन ले कंठी माला, उसके बाद माला देना।
दूंगी।
तो आप पहले दक्षिण कान में मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप सुनिए और बोलिए। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे,
हरे हरे,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
राम राम,
राम राम,
हरे हरे,
हरे हरे।
तो आपका दीक्षा नाम हुआ मधुपति दास। सुचेता, सुचेता खेतान, अब इधर आए। इधर आइए, पहले गुरु को प्रणाम कीजिए, फिर इधर बैठिए। आप पहले ऐसे प्रणाम कीजिए, गुरु को सामने से प्रणाम किया जाता है, साइड से नहीं। फिर उधर मुंह करके यहाँ बैठिए, ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठिए। ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साइड ना, हाँ ये नॉर्थ है ना। ओके, क्या आप बताइए, आप आज से भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री लक्ष्मी नृसिंहदेव, अग्नि, गुरुदेव, वैष्णवगण, इनके सामने आप प्रतिज्ञा करके बताइए कि आज से आप सारा जीवन किन किन चार नियमों का पालन करेंगे। माइक में बोलिए।
हरे कृष्ण, मैं चार जैसे कहेंगे सब नियमों का पालन करूंगी। पहला नियम, मांसाहार कभी भी नहीं खाऊंगी, लसन प्याज कुछ भी नहीं खाऊंगी, जुआ नहीं खेलना, दूसरा मद्यपान नहीं करना, झूठा अवैध संबंध नहीं करना, जैसे आपने।
और आप प्रतिदिन कितनी माला जप करेंगे?
16 तो करना ही करना है।
हाँ,
और बाकी
एकादशी में कितने वाला जप करेंगे?
कम से कम तो 25 हो रहा है, आपकी कृपा है।
हाँ ठीक है। ठीक है, आप रख दीजिए माइक। आप दक्षिण कान में सुनिए जो मंत्र हम महामंत्र बोल रहे हैं, आप दक्षिण कान में सुनकर बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका दीक्षा नाम है सर्व लक्ष्मीमयी देवीदासी। पहले प्रणाम मुझे आगे सामने से प्रणाम करिए, फिर बोलिए। पहले गुरु को प्रणाम करिए सामने से, उसके बाद फिर भगवान को प्रणाम करिए। हाँ, फिर भगवान को प्रणाम करिए। सर्वलक्ष्मी माई राधारानी का नाम है। अभी यज्ञ समाप्त शुरू होगा तो आप दोनों यज्ञ पर बैठिए। जो दीक्षा लिए कहाँ गए? यज्ञ